बाबा रफी कहाँ है? बाबा रफी, बाबा, 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 बाबा।
नहीं बेटा, शुक्रिया नहीं, नहीं जहमत नहीं देना चाहती, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। परजात को सलाम कहना। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है मेरी जान। नहीं कहा, नहीं शुक्रिया। हाँ, सब सलाम कह रहे हैं। खुदा हाफिज मेरी जान।
हमारी बेटी के ख्यालात देखिए।
तो उससे क्या पता था?
मेरा दिल राजी नहीं हो रहा है, जिंदगी की शुरुआत इतनी मुसीबतों से।
सुना उनका फेफड़ा भी खराब था।
देखने में तो नहीं लगता था कि उसकी तबीयत खराब हो।
कब वापस लौट रहे हैं?
7वीं के 5-6 दिन बाद।
गनीमत ये है कि चेलों तक पहुंच
तुम
जाएंगे।
तो बस हर चीज का मजाक उड़ाओ।
मैंने मजाक तो नहीं किया अम्मी।
तुम किस बात से परेशान हो फरो?
क्या फरजाद, शायद ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे को बहुत मानते थे।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ लाइए, ज़रीन साहिबा और नौशीन मैडम ऊपर हैं, जा सकती हैं।
तुम आ गए फरजाद बेटा। हमने बहुत बुरे दिन काटे फरजाद, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
आकर क्या करते?
तुम इस घर के बड़े बेटे हो।
बड़े बेटे को अपने बाप की मैयत में नहीं होना चाहिए था।
हम सबको थाने ले गए थे, پوچھ تاچھ کے لیے۔
ایک فون میرے آنے کے لیے کافی تھا۔
بیٹا ایسے پروگرام کو جلدی کرنا پڑتا ہے، انتظار نہیں کر سکتے۔
اتنا تو میرا حق تھا۔
کیوں نہیں کہتے کہ یہ آپ کا مشورہ تھا؟
ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا۔
جی نہیں انجینئر صاحب، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ فرزاد کو اسی وقت واپس آنا چاہیے، لیکن آپ نے کہا کہ فرزاد اور آپ کی بیٹی کو خوش رہنے دینا چاہیے تاکہ ان کا ہنی مون خراب نہ ہو۔
ہنی مون کی ایسی کی تیسی۔
اس وقت اس طرح کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا تھا اور سب متفق تھے۔
کیا آپ کی بیٹی کی خوشی کی خاطر مجھے اپنے باپ کی موت کی خبر نہیں دینی چاہیے تھی؟
بیٹا اگر تم یہاں ہوتے تو تم سے پوچھ تاچھ ہوتی، اسی لیے ہم نے سوچا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جانے تک رکنا چاہیے، پھر بعد میں آ تم لوگوں سے کہا جائے۔
معاف کیجیے گا زیبا صاحبہ، انجینئر صاحب ہمارا کوئی نہیں تھا، ہم بے بس ہو گئے تھے، یہ آپ ہی کا مشورہ تھا۔
آپ کے پاس میری غلطی کو سدھارنے کے لیے دو ہفتے کا موقع تھا۔ چلو بھائی یہاں سے چلیں۔
بہت بہت شکریہ زرین صاحبہ، بہت بہت شکریہ نوشین صاحبہ، بہتر انداز سے یہ خبر فرزاد کو نہیں دے سکتی تھی۔ اٹھو چلو بیٹی۔ کہاں نہ اٹھو،
میرا گھر یہی ہے امی، فرزاد جہاں رہے گا میں وہیں رہوں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہنا چاہیے، ایسے موقعوں پر انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ میں صرف کہنے آئی تھی کہ تم ٹھیک کہتے ہو، انہیں تم کو اپنے باپ سے الگ کرنے کا حق نہیں تھا۔
یہ سب اپنی ڈیڈی سے بھی کہا؟
پہلے تم سے کہنا چاہتی تھی، ان سے کہنے کے لیے ہمیشہ موقع رہے گا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے غموں کی شریک۔
کیا میں خواہش کر سکتا ہوں کہ تم بھی چلی جاؤ؟
نہیں فرزاد، میں نہیں جاؤں گی، میرا گھر وہیں ہے جہاں تم ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے برداشت کر لو، لیکن یہ نہ بھولنا میں تمہارے ساتھ ہوں۔
بہت برے دن گزرے ہیں۔ تمہاری مصیبتیں بھی جھیلی، ہمیشہ کی طرح تم خوش قسمت تھے اور ہم بد قسمت۔
ہمیں اطلاع دینی چاہیے۔
اس کا کیا فائدہ، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو چکا تھا۔
بغیر باپ کے گھر میں رونق نہیں رہتی۔
بابا تمہارے سب کچھ نہیں تھے، تم ان کے سب کچھ تھے۔ بابا مر گئے تو غم کا اظہار ضروری ہے، یتیم ہونا بہت مشکل ہے، اصل میں تو تم ہی تعزیت کے حقدار ہو۔ رفیع تو ہمارے لیے بہت پہلے ہی مر
کیوں غصہ دلا رہی ہو، یہ ان باتوں کا موقع ہے؟
اس لیے کہ ہمیں میڈیکل لا لے گئے، ہمارا ٹیسٹ کیا گیا کہ کہیں ہم قاتل تو نہیں، چونکہ کوئی مرد اس گھر میں نہیں تھا جو سینہ تان کر سامنے جاتا اور اپنی ماں اور بہن کی حمایت کرتا۔ چونکہ تم اپنی مستی کر رہے تھے اور ہم ہتھکڑی پہنے تھانے میں بیٹھے تھے۔ کہاں جا رہے ہو فرزاد؟
क्यों कब्र पर पत्थर नहीं लगा?
कम से कम ये काम तो तुम ही करो, आखिर उनके बड़े बेटे हो।
एक बड़ा काला पत्थर लगवाऊंगा, याद दिलाइएगा पैमान से, कहूं कि पत्थर सबसे महंगा होना चाहिए।
तो मन्ना ने फोन किया था वसीयत नामा सुनाने के लिए।
वसीयत?
उसने कहा कुछ गवाहों की भी जरूरत है। मैंने सोचा इंजीनियर साहब और आजर की अम्मी को इस काम के लिए जहमत दें।
उन्हीं को क्यों?
क्यों नहीं, अब हमारे घर के बड़े वही तो हैं।
नौशीन, इन बातों का मौका नहीं।
अच्छा चलो बच्चों, चलो।
चलिए, बहुत देर हो गई।
आपके वालिद इन दिनों किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे?
कई प्रोग्राम थे उनके, लेकिन मुझे ठीक से नहीं मालूम, मौका ही नहीं मिला उसके बारे में बात करें। बहरहाल कोई खतरनाक काम नहीं था, हमेशा की तरह टावर बनवाना, बिल्डिंग तैयार
करना। इनके रकीबों को जानते हो? या कोई रकीब था, या कोई दुश्मन, उनके करीबी दोस्त, कोई ऐसा जो मारने के कोई खास वजह रखता हो?
मैं बरसों से यहाँ से दूर था, लेकिन चूंकि खैरात ज्यादा करते थे लिहाजा उनके दुश्मन नहीं होंगे।
यानी सबको पैसे से खरीद लेते?
मेरा ये मतलब नहीं था, असल में वो उसूलों के पाबंद थे।
मुझे लगता है मेरी मालूमात आपके वालिद की सिलसिले में आपकी मालूमात से कहीं ज्यादा है।
मेरी नजर में सिर्फ कातिल के बारे में मालूमात होनी चाहिए।
आपकी फैमिली को जो बातें बताई गई हैं, इनके अलावा फिलहाल कोई नई खबर नहीं है।
इस शहर में किसी का हाथ मेरे बाप के खून से रंगीन है, लेकिन आराम से शहर में घूम रहा है।
ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, अलबत्ता इन्हें लगता है। लेकिन हमारे पास भी कत्ल के सिलसिले में बहुत सारी खबरें हैं। बाज़ बातें डिटेल में मालूम हैं, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर नहीं बता सकते।
हमारा जाना कहीं मुदाखलत ना कहलाए।
उन्होंने खुद ही तो बुलाया है।
वसीयतनामा पढ़ने में गवाह की क्या जरूरत है? सब कुछ तो वाज़े है। बेटा बेटी के दो गुना पाएगा और बीवी हक मेहर के बाद 1/8 हिस्सा।
शाबाश, बड़ी अच्छी पढ़ाई की है।
इन बातों को हर औरत को जानना चाहिए।
क्यों, मुझे इस बात में दिलचस्पी नहीं।
क्योंकि ये घर आपके नाम है।
ये वो सनद थी जो मलिकी साहब मरहूम ने लिखी थी, जो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया।
ये तो वसीयतनामे की तरह नहीं थी तमन्ना साहब।
जी हाँ, दरअसल मलिकी साहब ने अपनी शर्तें बयान की और दस्तखत करके अंगूठे का निशान लगा दिया।
मुख्तसर तौर पर इसका क्या मतलब है?
मुख्तसर यह कि मलिकी साहब मरहूम ने अपनी गैर मकुला जी से अपने बेटे फरजाद के नाम अपनी ज़िंदगी में ही हेबा कर दी थी और बिला अज़ल वकालत लेकर तमाम चीज़ें उनके नाम ही हो गई हैं।
तुमने वकालत दी थी बाबा को?
बाहर जाने से पहले ही लवासान की ज़मीनें मेरे नाम कर चुके थे।
और हाँ, इस घर का आधा हिस्सा अपनी बीवी के नाम और आधा हिस्सा अपनी बेटी के नाम किया है। अलबत्ते इसमें भी शर्त है कि जब तक शादी नहीं हुई है उनका है, और शादी के बाद उनके हाथ से निकल जाएगा और फरजाद मलिकी साहब का हिस्सा बन जाएगा। नौशीन, मलिकी साहबा और मरहूम की अहलिया के खाते में 100 करोड़ रहेगा कि इसके प्रॉफिट से इस्तेफादा करें। البتہ ان میں سے جس کی شادی کرے اس کا حصہ دوسرے کے نام چلا جائے گا، اور انتقال کی صورت میں خدا نہ خواستہ فرزاد ملکی صاحب کے حصے میں چلا جائے گا۔ اقدسیہ روڈ پر جو مکان ہے اس کا آدھا حصہ آذر صاحبہ کا ہے، جسے فرزاد صاحب انہیں دیں گے۔ اور مختاری روڈ پر جو گھر ہے وہ پیمان سہرابی کو ہبہ کیا گیا ہے۔
یہ کیسا کھیل ہے؟ پیمان سہرابی کون ہوتا ہے جس کے نام پہ ایک گھر کیا گیا ہے؟
میں معافی مانگتا ہوں نوشین صاحبہ، یہ ایک وصیت نامہ نہیں ہے۔ قانون کے مطابق ایک شخص 1/3 حصے سے زیادہ پر وصیت نہیں کر سکتا ہے، کہ البتہ ملکی صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اپنے تمام اموال کو یا تو کسی کے نام کر گئے اور یا ہبہ کر گئے ہیں، کہ ان دونوں میں چھوٹا سا فرق ہے۔
تمنا صاحب، یہ بات آپ کے درمیان کب ہوئی تھی؟
تقریباً 2-3 ہفتہ پہلے۔
کیا مرحوم ملکی کا کوئی اور وصیت نامہ بھی تھا؟
البتہ اس سے پہلے بھی انہوں نے فون کیا تھا تاکہ وصیت نامے کو پورا لکھا جائے، لیکن موقع سمجھ کر، لیکن بعد میں انہوں نے فون کیا کہ جیسا میں نے عرض کیا ویسا لکھا جائے، کہ البتہ کچھ قانونی اور سرکاری کام باقی ہیں جو۔
اب ان کے انتقال کے بعد باقی کا کام کیسے ہوگا؟
الحمدللہ ان کے انتقال سے پہلے اصل کام انجام پا چکے ہیں۔
دلہن صاحبہ، آپ کچھ نہیں کہنا چاہتی؟
تم ناراض ہو تو ہم پہ غصہ کیوں اتار رہی ہو؟
ہاں میں ناراض ہوں، بہت ناراض ہوں۔
خود پر قابو رکھو،
آپ سکون سے بیٹھے بھائی جان، کی فری میں سب چیز کے مالک ہو
گئے۔ نوشین،
میں چپ نہیں رہوں گی۔ تمنا صاحب، اس وقت یہ گھر کس کا ہے؟
میں نے عرض کیا کہ اس کا آدھا حصہ مرحوم کی اہلیہ کے نام ہے اور آدھا حصہ آپ کے نام ہے، کہ شادی کی صورت
تو پھر اس وقت یہ گھر ہمارا ہے۔ تو پھر باہر نکلیے، سب لوگ باہر۔
نوشین، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
ہمارے گھر سے سب نکلے، ہم نے نہ تو شادی کی ہے اور نہ ہی مرے ہیں، باہر جائیے سب لوگ۔
تو پھر اب مجھے اجازت دیں، چلتا ہوں، خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
تھوڑا پانی کھلا رہنے دو، میرے خیال میں آج میرے گھر چلتے ہیں، کل آ کے باقی سامان سیٹ کر دیں گے۔
उन दिनों की खुशी बेहतर है या इन दिनों का गम। अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बाबा ने ऐसा काम किया हो। ये कैसे मुमकिन है? कौन यकीन करेगा? किससे कुछ कह सकूंगी? मैं पागल हो रही हूं।
तो इन्हें मत देखो।
जब भी मुझे डांटते थे या जलील करते थे, जब इन फिल्मों पर नजर पड़ती थी तो कहते थे गलत मत सोचो, तुम्हारे बाबा तुम्हें चाहते हैं। मिजाज ही ऐसा है, लेकिन दिल से तुम्हें चाहते हैं। सब खत्म हो गया। अब कोई रास्ता भी नहीं बचा कि जिसकी वजह से अपने आप से झूठ बोल सकूं। अब मैं नहीं चाहती हूं कि रफी और फरजाद की कोई निशानी इस घर में हो। मैं सबको जला दूंगी।
ऐसे तो और भी परेशान हो जाओगी।
इत्तेफाक से मैं भी यही चाहती हूँ कि जब तक जिंदा हूँ इस जिल्लत को ना भूलूं कि इन बरसों हम फरजाद की जिंदगी के पासवान कुत्ते थे और कुछ नहीं।
फरजाद को घर से नहीं निकालना चाहिए था। थोड़ा बर्दाश्त करती तो मौके पर अपना हिस्सा इससे ले लेती। अगर हम अपना हिस्सा कभी ना कभी तो वापस लेकर ही रहेंगे। पहले शराफत से, नहीं दिया तो जबरदस्ती।
मौसम अच्छा और आसमान नीला है। हम अपने नए घर में आ गए। किस्मत के घर, खुशियों का घर, एक नई नवेली दुल्हन जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है उस मर्द के साथ जिसे चाहती थी और उस मर्द के लिए हज़ारों मुश्किलें बर्दाश्त कर रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू कर ली, ऐसी ज़िंदगी जिसके लिए लोग तरसते हैं। लेकिन क्यों मेरा दिल आसमान की तरह साफ नहीं है? क्यों हर आवाज़ से डर महसूस होता है और खौफ से आसपास देखती हूँ? मैं ठीक हूँ, मौसम अच्छा है, ज़िंदगी अच्छी है, तो फिर ये डर कहाँ से आया? पहले तो मेरी ज़िंदगी फरजाद के बाप के खून से रंगीन हुई। मेरा दिल कहता है उसको मिटा दूँ। मेरा दिल कहता है कि काश फरजाद के बाप ने उसके लिए कोई माल नहीं छोड़ा होता तो नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करते, एक एक ईंट रखते, इसमें ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन अब अपनी ज़िंदगी को आमादा तौर पर हासिल किया है। मैं डर रही हूँ क्योंकि इस ज़िंदगी को मैंने नहीं बनाया है। मैं डर रही हूँ क्योंकि इस ज़िंदगी के लिए कोई मेहनत नहीं की है। मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, बहुत ज़्यादा।
अपना नाम और पैगाम रिकॉर्ड करा दें, मैं आपसे रابطہ करूंगी। शुक्रिया।
हेलो। हाँ सर, तुम्हारे पापा ने तुम्हें और फरजाद को खाने पर बुलाया है, ज़रूर आना, भूलना मत। अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी चाबी गायब हो गई है?
मैडम कहाँ हैं?
पीछे वाले कमरे में।
अकेली?
जी हाँ।
आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम।
देख रहे हो सब जगह साफ कर दिया है, कहीं से नहीं लगता कि इस कमरे में खून बहा होगा। बोलो वारिस साहब, नया घर मुबारक हो।
मुझे उम्मीद नहीं थी।
रफी ने सबको ताज्जुब में डाल दिया। आओ बैठो।
मरहूम रफी मेरे बाप की जगह थे। मैं सोचता था कि शायद ये सिर्फ मेरे जज्बात हैं, लेकिन इस अमल के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि वो भी मुझे मानते थे।
अलबत्ता तुम रफी को ज्यादा चाहते थे, उनके मौत के बाद भी बहुत रोए। शायद कोई ना जाने, लेकिन मैं तो जानती थी कि तुम रफी के कितने वफादार रहे हो।
ऐसा ही है।
हत्ता उस वक्त भी जब बेइज्जत करके घर से निकाला।
उनका इससे ज्यादा मुझ पर हक था। उस घर की क्या अहमियत, जब आप कहें तो उसे वापस लौटा सकता हूं।
ज्यादा सखावत मत दिखाओ
मलकी साहब। मेरे आने की असल वजह यह है कि कहूं कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं। बचपन से ही मलकी साहब के ज़ेर साया परवान चढ़ा हूं और उनकी गैर मौजूदगी में आपके ज़ेर साया हूं।
उनकी तमाम जायदाद फरजाद को मिल चुकी है, क्यों उसके पास नहीं जाते?
सब कुछ तो पैसा नहीं है।
तो फिर किस लिए आए हो?
घर की चाबियां हैं, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास रहनी चाहिए। मलकी साहिबा, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता और मशवरा देता हूँ कि घर के ताले बदल दीजिए। इस घर में बहुत से अजीब वाकयात रूनुमा हुए हैं। जो
कौन है?
माफ कीजिएगा, कर्नल अकाशा साहब थाने से तशरीफ लाए हैं। तशरीफ लाइए।
सलाम अलैकुम। वाह क्या बात है, सोरावी साहब तो यही तशरीफ रखते हैं।
जी
वालेकुम अस्सलाम, हमसे दूर बहुत खुश लग रही हो।
और आप तो जाते हैं तो एक फोन की भी ज़हमत नहीं गवारा करते।
उफ, सुबह से अब तक 5 बार तो बात हो चुकी है,
लेकिन एक बार भी तुमने नहीं किया फोन।
कहाँ हो?
इधर ही हूँ, नीचे लिफ्ट के इंतजार में।
बेकार आदमी, ऊपर आओ ना।
आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। एक छोटी सी माजरत अपनी फैमिली के रवैये के लिए।
वैसे मुझे इसका इंतजार नहीं था।
बहरहाल आपके शाये निशान तो नहीं।
तो अब इसमें क्या है?
खोलो तो समझ जाओगी।
मजाक तो नहीं है?
नहीं भाई।
हेलो,
मुझे आपको परेशान करना है।
मेरे लिए एक फूल भी काफी था।
असल में मैं चाहता हूँ कि जब मैं फोन करूँ तो आप ही फोन रिसीव करें।
मोहतरम जनाब, अगर कोई बात है आज रात तशरीफ लाएं, मेरे बाबा से कहें।
शायद आपस में ही फैसला कर लें।
जो कि आज रात उनके यहाँ दावत है।
अच्छा, वाकई?
मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही फीका हो गया ना, है ना? क्या सोच रहे हो?
कुछ नहीं।
तुम बचपन से ही जब भी कोई बात करना चाहते थे ना तो पहले चुप हो जाते थे।
कभी कभी सोचता हूँ कि काश अभी 10 साल का होता या उससे ज्यादा 15 साल का।
अच्छा,
एक बात कहूँ तो नाराज तो नहीं होंगी?
मुझे तो याद नहीं आता कि हमने एक दूसरे से कुछ छुपाया हो, चाहे नाराजगी की बात भी हो।
जितना बड़ा होता जा रहा हूँ उतनी बाबा की याद आने लगी है। जब भी कोई मुश्किल पड़ती है अपने आप से कहता हूँ, अगर बाबा होते तो ऐसा होता, अगर बाबा होते तो वैसा होता। आपको नाराज नहीं करना चाहता, जो बात दिल में है वो कहना चाहता हूँ, वरना आप तो जानती हैं कितना आपको चाहता हूँ।
हमने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तुम शायद अपने शाया निशान मकाम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। अब इसके पास से तो बस तुम हो और तुम।
जानता हूं, इसीलिए एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज ना मत कहिएगा।
अगर मंतिकी हो तो क्यों मुखालफत करूंगी? और फिर तुमने अगर कुछ सोच लिया है तो फिर कुछ कहने से फायदा भी नहीं।
मैं एक कंपनी खोलने जा रहा हूँ, परेशान ना हो, मैं सब कुछ सोच चुका हूँ। अगर ठीक से कर पाऊँ तो कारोबार और अच्छे हो सकते।
जलाल साहब से कोई बात हो गई है?
नहीं, सिर्फ मैं मुस्तकिल रहना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता हूँ।
तो क्या इस वक्त ऐसा नहीं हो रहा है?
वहाँ पर जो कुछ भी करूँ तो लोग कहेंगे शायान ने मदद की है, शायान ने उसका साथ दिया, शायान ने।
तो क्या हुआ, किसी गैर ने तो नहीं किया है ना?
नहीं, जानता हूँ, लेकिन कब तक इनके और उनके लिए काम करूं? जो तनख्वाह मैं शायान से लेता हूं उससे 100 साल बाद भी एक घर नहीं खरीद सकता।
तुम्हारे पास तो घर भी है, गाड़ी भी है।
आपका घर है? परेशान ना हो शुको साहिबा, मुझे कभी ना कभी तो शुरू करना चाहिए। मैंने पूरा हिसाब किताब कर लिया है, परेशानी की बात नहीं है। आप रुकें, कैलकुलेटर लाता हूं।
ये लीजिए।
शुक्रिया।
नौशीजान, मैंने ही आपके लिए कहा था कि आपके वालिद की मौत की खबर आपको ना दी जाए। शायद आप इस वक्त नाराज हों, लेकिन उस वक्त ज्यादा होते। आपकी खुशियां भी बर्बाद हो जाती। बहरहाल हम सबको अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए।
लेकिन मैं अपने बाप को आखिरी बार देख नहीं सका।
जानता हूं बहुत मुश्किल है। इस वक्त भी अगर ना आते तो आपके लिए दुआ ही करता। आप लोग साथ में खुश रहें, हमें इसके अलावा और क्या चाहिए।
मैंने भी गलत काम किया, माफी चाहता हूं। असल में बहुत बड़ा झटका था। बाबा मुझे बहुत चाहते थे, इसीलिए सब मुझसे नफरत करते थे। मैं चाहता था कि उनकी तदफीन के वक्त कोई तो उनके सराहने हो जो उनको दिल से चाहता हो।
वैसे क्या मजेदार वसीयत की है?
मजेदार क्यों?
पता चल रहा था या तो अपनी बीवी पर शक था या बदगुमान इंसान था।
हमसे क्या मतलब, दूसरों के बारे में ऐसा मत कहो।
वाकई नौशीन ने आपको घर से निकाल दिया?
गलत काम किया, लेकिन उसे हक देती हूँ।
फरजाद क्या कहता है?
फरजाद भी कह रहा था कि नाराज होना उसका हक है, लेकिन अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा।
दिखा दिया।
बेटी अपने शोहर से कहना कि आज रात तो हमारे आबाई घर आए हैं, लेकिन कल तुम्हारे आबाई घर में रहेंगे।
ये भी कैसी अजीब फैमिली है, अल्लाह की पनाह।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी हो गई।
ये मेरा फर्ज था फरजाद साहब।
क्या ये हो सकता है कि साहब आखिर से निकाल दो? हम तुम एक साथ पले बढ़े हैं, साथ स्कूल गए, इस तरह हम दोनों के लिए बेहतर है ना।
साथ में स्कूल जरूर गए, लेकिन जब भी आपकी किसी से लड़ाई हुई तो मैं हमेशा आगे बढ़ा। एक बार आपने लड़ाई की थी, लेकिन मरहूम ने भी मेरी धुलाई की कि तुम उस वक्त कहाँ थे।
खुदा उनकी मगफिरत करे, मुझे बिल्कुल याद नहीं।
पिटाई तो मैंने खाई थी, इसीलिए मुझे याद है, आपको नहीं।
उनका काम आगे बढ़ाना है, मैंने उनसे वादा किया था। तुम उनके सब कुछ थे और सबसे ज्यादा मदद कर सकते हो। पैमा, मैं चाह रहा था कि आज ही तुम घर जाओ और उनके तमाम सामान और उनकी यादगारें यहां लेकर आ जाओ।
घर का ताला बदल दिया है, चाबियां भी मुझसे ले चुके हैं। मेरे ख्याल से मुझे उस घर में दाखिला मिलना नामुमकिन है। वो जानते होंगे कि मैं आपके साथ हूं।
ठीक है, ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या किया जा सकता है।